आज है 1 अक्टूबर दिन गुरुवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ सुशीला सिंह। नवाज शरीफ ने यूएन में उठाया कश्मीर का मुद्दा, कहा समाधान निकालने में यूएन हुआ नाकाम।
Since 1947, the Kashmir dispute has remained unresolved. United Nations Security Council resolutions have remained unimplemented. This is the most persistent failure.
सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आज से हड़ताल पर।
वजह यह है कि टोल के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। टोल आज जितना हम भरते हैं वो सरकारी खाते में नहीं जाता, और टोल के अंदर जो अवैध वसूली होती है उसके हम खिलाफ हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार की एड्स पीड़ितों की मदद की घोषणा के बाद खटाई में पड़ी योजना, होगी समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें अधिवेशन में भाषण देते हुए एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि इसे जल्द सुलझाया जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में लड़ाई के बजाय सहयोग होना चाहिए। उन्होंने भारत पर सीमा रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में पहली बार फलस्तीनी झंडा फहराया गया। इस मौके पर फलस्तीन अधिकृत क्षेत्र के राष्ट्रपति महमूद अब्बास मौजूद थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने कहा कि कल का दिन दुनिया भर के फलस्तीनियों के लिए गर्व और उम्मीद का दिन रहा। महमूद अब्बास ने कहा कि फलस्तीन अधिकृत क्षेत्र को देश का दर्जा देने का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है, ये बात नितांत अनुचित है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के स्थायी प्रतिनिधि रॉन प्रोसोर ने इस बात पर जोर दिया कि फलस्तीन अधिकृत क्षेत्र को देश का दर्जा सिर्फ इसराइल से सीधे बात करने पर ही हासिल हो सकता है। रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने इस पर सहमति जताई है कि सीरिया में दोनों देशों को संयुक्त सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में दोनों देशों के विदेश मंत्री एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इससे कुछ ही देर पहले अमरीकी रक्षा मंत्री एश कार्टर ने सीरिया पर रूसी हवाई हमले की आलोचना करते हुए कहा था कि रूस सीरियाई संघर्ष के आग में घी का काम करने का जोखिम मोल ले रहा है। उधर सीरिया में रूसी हवाई हमलों में जिन इलाकों को निशाना बनाया गया उनमें से तालबिसे एक है, जो होम्स से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बीबीसी ने वहां कई लोगों को ये कहते सुना कि इन हमले में मारे गए लोगों में बच्चों समेत कई आम नागरिक थे। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि यहां पर इस्लामिक स्टेट के लड़ाकुओं का नहीं बल्कि राष्ट्रपति असद का विरोध करने वाले संगठनों का ठिकाना है। ये इलाका बहुत पास है, सीरिया के बीच में होम्स है, और यही वो इलाका है जो अब भी विद्रोहियों के कब्जे में है। ये आईएस के काबू में नहीं बल्कि फ्री सीरियन आर्मी नाम के संगठन के नियंत्रण में है। मेरे ख्याल से तो वो विद्रोहियों से छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रपति असद की मदद कर रहे हैं, आईएस या नुसरा फ्रंट से नहीं लड़ रहे। ये थे तालबिसे के स्थानीय निवासी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नाइजीरिया की सेना का कहना है कि इस्लामिक चरमपंथी गुट बोको हराम जिन इलाकों को छोड़ रहा है वहां के कुओं और नहरों में जहर मिला रहा है। सेना के मुताबिक बोर्नो राज्य के कई गांवों में जहरीला पानी पीने से कई मवेशी मारे गए हैं। सेना ने स्थानीय लोगों को चेतावनी दी है कि वे उन इलाकों के नदी नहरों से पानी न पिएं जहां से बोको हराम के चरमपंथी हाल में ही निकले हों। अफगानिस्तान के कुंदूज शहर के पास हवाई अड्डे पर कब्जा बनाए रखने के लिए अफगान सुरक्षा बल और तालिबान लड़ाकों के बीच गंभीर लड़ाई चल रही है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर लाइव सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नवाज शरीफ के यूएन में दिए गए भाषण से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया और कश्मीर का मुद्दा ना सुलझा पाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र की नाकामी बताया। साथ ही उन्होंने भारत के साथ शांति कायम रखने के लिए सुझाव दिए और कहा कि बातचीत के जरिए ही शांति हासिल की जा सकती है। एक रिपोर्ट के साथ न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें अधिवेशन में बोलते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि 1947 से अब तक कश्मीर का मुद्दा सुलझाया जाना बाकी है।
Since 1947, the Kashmir dispute has remained unresolved. United Nations Security Council resolutions...
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कह रहे थे कि कश्मीर के सिलसिले में सुरक्षा परिषद के कई प्रस्ताव लागू नहीं हुए हैं। कश्मीर में तीन पीढ़ियों ने सिर्फ टूटे वादे और घोर उत्पीड़न सहा है। उनका कहना था कि कश्मीर मुद्दे को न सुलझा पाना संयुक्त राष्ट्र की नाकामी है। नवाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में लड़ाई के बजाय सहयोग होना चाहिए। नवाज शरीफ ने भारत पर सीमा रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया।
Yet today, ceasefire violations along the line of control and the working boundary are
नवाज शरीफ कह रहे थे कि आज सीमा रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन बढ़ता जा रहा है, जिससे नागरिकों की मौतें हो रही हैं। भारत का नाम लिए बगैर नवाज शरीफ ने कहा कि अकलमंदी ये होगी कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ी फैलाने से गुरेज करे। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति समझौते को बढ़ावा देना चाहता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच स्थित सीमा रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के दल द्वारा निगरानी किए जाने का सुझाव भी दिया। नवाज शरीफ ने अन्य सुझाव भी दिए, जिसमें सीमा पर 2003 में तय किए गए संघर्ष विराम पर भारत और पाकिस्तान दोनों अमल करें, दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर किसी भी सूरत में हमला न करने का संकल्प लें और भारतीय प्रशासित कश्मीर से सेना को हटाया जाए, और यह भी कि सियाचिन की चोटी से दोनों पीछे हटने पर राजी हो जाएं। नवाज शरीफ का कहना था कि बातचीत के जरिए शांति हासिल की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि सुधार होना तो जरूरी है, लेकिन सुरक्षा परिषद शक्तिशाली देशों का क्लब भर बनकर न रह जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में तनाव में बढ़ोतरी हुई है और दोनों देशों के बीच बातचीत भी रुक गई है। उधर भारतीय विदेश विभाग ने नवाज शरीफ के भाषण का जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान खुद अपनी नीतियों का शिकार है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला प्रमुख देश है। अब आज गुरुवार को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को संबोधित करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि नवाज शरीफ के भाषण में भारत पर लगाए गए आरोपों का सुषमा स्वराज अपने भाषण के दौरान गिन गिन कर जवाब देंगी। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उठाया कश्मीर का मुद्दा और कहा कि शांति बातचीत के जरिए ही हासिल हो सकती है, लेकिन कश्मीर के मुद्दे को इस वक्त उठाना और इसे ना सुलझा पाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र की नाकामी बताना क्या बताता है? यही सवाल मैंने पूछा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और डेलावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान से।
मेरी तो पहली एडवाइस नवाज शरीफ के लिए ये है कि ही नीड्स टू गेट अ बेटर स्पीच राइटर, क्योंकि उनकी जो तकरीर थी उसमें इतने कॉन्ट्रडिक्शंस थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि हम पीस इनिशिएटिव, पीस के लिए डायरेक्टेड हूँ, मैं चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस हो जाए, लेकिन उन्होंने झगड़े वाला मुद्दा छेड़ दिया पहले ही चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर वो वाकई में इंडिया के साथ पीसफुल एग्जिस्टेंस के डिजायरस है, तो पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, खासतौर से टेररिस्ट ग्रुप्स, मिसाल के तौर पे हाफिज सईद जैसे लोगों को, वो उनको पकड़े, उनको बंद करे, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसके वजह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हर अरीना में, यहाँ तक के क्रिकेट के अरीना में भी बुरे बने हुए हैं, और वो उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करे। उनकी तकरीर से तो बेहतर उनके एक्शंस होते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर सख्ती से तालिबान के ऊपर एक्शन लिए हैं, अगर उस तरह से वो सख्ती से एक्शन उन ग्रुप्स के साथ ले जो इंडिया में टेररिज्म फैलाते हैं, तो देट विल बी ए मच मोर स्ट्रॉन्गर मैसेज के पाकिस्तान अब इंडिया के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए तैयार है। आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अब अपना बांग्लादेश का टूर कैंसिल कर रहा है, तो ये जो आईसिस भी फैल रहा है वो ना पूरे रीजन में फैल रहा है, पाकिस्तान में भी आ चुका है, तो ये इन मुद्दों से वो पाकिस्तान का अटेंशन हटाने के लिए वो ये फिर से कश्मीर का शोशा छोड़े। और दूसरी चीज ये है कि इससे उनको अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी में काफी पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है वो इंटरनेशनल सोसाइटी को एंटी इंडिया नहीं लगेगी लेकिन रेट्रोग्रेसिव लगेगी, यानी ये पुराने मुद्दे क्यों छेड़ रहे हैं, दिस इज नॉट अ फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन। लेकिन पाकिस्तान में ये तकरीर को काफी एंटी इंडिया की तरह देखा जाएगा और लोग कहेंगे वाह वाह, इन्होंने इंडिया को जाके वहां पे सुना दिया।
जी, और इस वक्त पर कश्मीर का मुद्दा उठाया जाना और शांति कायम रखने के लिए सुझाव भी दिए उन्होंने, और ये कहा कि बातचीत के जरिए ही शांति हासिल की जा सकती है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं?
अगर हम उनकी स्पीच को उसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से हटकर अगर उसको उसके मेरिट पे देखें, तो उनके पास सिर्फ दो चीजें काफी दिलचस्प है। एक तो एक मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एंग्जाइटी बढ़ रही है कि शायद इंडिया उन पे हमला कर, तो इसलिए वो बार बार असेस कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों को चाहिए کہ وہ بات کو انڈورس کریں کہ وہ نان اگریشن پیکٹ کی طرح بات ہو, یو این کے اکاؤنٹ میں انہوں نے کہا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یہ اینگزائٹی بڑھ رہی ہے کہ شاید انڈیا کوئی اگریسو موو کرے پاکستان کے خلاف. دوسری چیز انہوں نے 2003 کا ریفرنس کیا ہے. بیسیکلی وہ جو سولوشن ہے انڈیا پاکستان کے یہ جو مسئلے پر کشمیر میں جو اتنا ہو گیا ہے, جو شاید دونوں ملکوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ ہے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو لیجیٹیمائز کر دیں اور ہم ادھر تم ادھر والا سوال کر دیں. جو پاکستان کے پاس ہے اب وہ ان کو رہنے دے, اور انڈیا کے پاس جو ہے وہ انڈیا کے پاس رہنے دے, اینڈ دین وی موو آن ایز اف کہ وہ مسئلہ ہے ہی نہیں. اگر نواز شریف سیریس ہیں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں نارملائز کرنے کے لیے ریلیشنز, تو ان کو چاہیے کہ ان کی سول سوسائٹی پاکستان میں ایسے اسٹیپس لے جس کے وجہ سے پاکستان کی سول سوسائٹی انڈیا کے ساتھ کسی طرح سے کشمیر پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو, اور اس طرح کے اسٹیپس ہمیں انڈیا میں بھی لینا چاہیے, اور یہ لانگ ڈسٹینس ہے.
یہ تھے انتراشٹریہ معاملوں کے جانکار اور ڈیلیور یونیورسٹی میں پروفیسر مقتدر خان. بھارت کی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنز کا کہنا ہے کہ وہ سرکاری نیتی کے پرتی اپنا ورودھ درج کرانے کے لیے آج راشٹر ویاپی ہڑتال کر رہے ہیں. ٹرکوں کی ہڑتال سے سامان کی ڈھلائی پر اثر پڑ سکتا ہے. ہڑتال کی وجہ جاننے کے لیے ہمارے سہیوگی سندیپ سونی نے بات کی آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کے ادھیکش بھیم وادوا سے.
وجہ یہ ہے کہ ٹول کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ٹول آج جتنا ہم بھرتے ہیں وہ سرکاری کھاتے میں نہیں جاتا, اور ٹول کے اندر جو اویدھ وصولی ہوتی ہے اس کے ہم خلاف ہیں. اس ٹول ناکوں سے ہمارا ہر آدمی, ایک عام آدمی پریشان ہے. آج 72% کلیکشن وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سے آتی ہے کمرشل ویکل سے. ہم 72% بھی دینے کو تیار ہیں, لیکن ہمیں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. وہ ٹرانسپیرنٹ ڈاٹا ہونا چاہیے. جو اویدھ پیسہ ہم لوگوں سے وصولا جاتا ہے وہ کس پرائیویٹ پاکٹ میں جاتا ہے, کس کارپوریٹ سیکٹر کو جاتا ہے, کس ایک اتھارٹی کو جاتا ہے, وہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ گھوٹالا کیوں. کون گھوٹالا تھا, یہ اس سے بھی بڑا گھوٹالا ہے, کیونکہ ٹول کی جو آر ٹی آئی سے ڈاٹا ملا وہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم 1 روپیہ بھرتے ہیں تو سرکار کے پاس اس کا 20 پیسے جاتا ہے, 80 پیسے اس کا جو ہے اویدھ طریقے سے کچھ ایسی ہستیوں کے پاس چلا جاتا ہے جہاں پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. دوسرا مدعا ہمارا ٹی ڈی ایس کا تھا. ٹی ڈی ایس ہم نے کہا ٹی ڈی ایس ہم پہ لاگو نہیں ہوتا. ٹی ڈی ایس کے لیے ابھی تک کوئی ڈیفائن نہیں کیا انہوں نے کہ ٹی ڈی ایس کیوں. 6 سال پہلے ٹی ڈی ایس لگا تھا ہم لوگوں کے ٹریڈ پہ, وہ لگایا تھا چدمبرم جی نے جو ہمارے فائنانس منسٹر تھے. اس کے بعد جو آج کے پریزنٹ ہمارے راشٹرپتی ہیں, یہ اس ٹائم پرنو مکھرجی وت منتری تھے, انہوں نے اپنی سپیچ کے اندر, اپنے بجٹ بھاشن کے اندر یہ کہا کہ یہ لوگ ٹی ڈی ایس کے انڈر میں نہیں آتے, اس لیے ٹی ڈی ایس ختم کر دیا جائے. تو 4 سال سے وہ ٹی ڈی ایس ختم تھا, لیکن درواگیہ ہمارا کہ آج پھر وہ ٹی ڈی ایس انہوں نے لگا دیا.
ہڑتال نہ ہو اس کو روکنے کے لیے کیا سرکار سے آپ کی کسی طرح کی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟
پریوان منتری نتن گڈکری جی سے بات ہوئی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹول ہٹانے کا کوئی وکلپ نہیں ہے, لیکن سرکار اپنی بات کے اوپر اڑی گئے کہ ہمیں ٹول بیریئر نہیں ہٹا سکتے, اور ہمیں ٹول بیریئر چاہیے نہیں. اگر سرکار کرپشن نہیں روک سکتی تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے. ریوینیو لینے کا جو ان کا طریقہ ہے ٹول کے اوپر, جو کرپشن ہب بنے ہوئے ہیں, اس کو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے, نہ ہی ہماری جو سنستھائیں ہیں, جو ہمارا ویوسائے ہے چل پائے.
یہ بتائیے کہ ہڑتال شروع کتنے بجے ہوگی اور کب تک جاری رہے گی؟
صبح 6 بجے سے ہڑتال جاری ہے, اور جب تک سرکار ہماری مانگیں نہیں مان رہی تو یہ ہڑتال جاری رہے گی. اگر آج سرکار ہماری بات کو مان لے, ہم تو ہڑتال کے حق میں نہیں ہیں, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمارا روزگار جب نہیں چل رہا, جب ہمارا ویوسائے بالکل آج انتم پڑاؤ پہ ہے, جو آج سے 1 سال پہلے کسان کی حالت تھی وہ آج ہمارے ٹرکر کی حالت. کیا یہ سرکار تب جاگے گی جب ٹرانسپورٹر بھی سوسائڈ کرنا شروع کر دیں گے؟
بادوا جی, آپ کو اندازہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کے ٹرک چلتے ہیں نہیں چلیں گے تو اس سے سامان کی آواجاہی پر کتنا اثر پڑے گا؟
یہی بات ہم نے سرکار کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ دیکھیے کتنا ایک عام آدمی پریشان ہوگا, اور جس عام آدمی نے آپ کو آج ان کرسیوں پہ ان منترالیوں میں بٹھایا ہے, آپ کی یہ مورل ڈیوٹی بنتی ہے اس عام آدمی کی بات کو سنیں اور اس کا کوئی نہ کوئی سمادھان ڈھونڈیں.
یہ تھے آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کے ادھیکش بھیم بادوا. حالانکہ اس مدے پر آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس اور سرکار کے بیچ بات چیت بھی ہوئی, لیکن بات آگے نہیں بڑھ پائی. اس کا کارن جاننے کے لیے ہمارے سہیوگی سندیپ سونی نے ہی کیندریہ پریوہن منتری نتن گڈکری سے بات کی.
मेरी उनसे बात भी हुई और चर्चा भी हुई, जो तीन इशू थे इसमें से एक पहला था कि टोल नाके पर ई टोल कर रहे हैं। हमने कहा दिसंबर तक पूरे राष्ट्रीय महामार्ग पर ई टोल करेंगे, राज्य सरकार को भी हम लोग इसमें हमारा पूरा सिस्टम फ्री ऑफ चार्ज देंगे, तो इससे देश में ई टोल हो जाएगा तो समय जो लगता है वो नहीं लगेगा। दूसरा, वो बैंक में जैसे मोबाइल फोन जैसी अरेंजमेंट हो जाएगी, आप पैसा भरो और आपको ई टोल हो जाएगा। दूसरा, उनका सर्विस टैक्स के बारे में और TDS के बारे में था, और तीसरी बात जो थी कि वो टोल ही अबॉलिश करो कह रहे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं उनको समझाया कि इसमें प्राइवेट भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी हुए हैं, और इस प्रकार से एक मुश्त आप टोल देंगे और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ये अभी इसके बारे में कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। आप भी कोई सोल्यूशन देते रहे, अगर कोई निकलेगा तो आगे भविष्य में सोचेंगे, पर आज ये संभव नहीं है।
यानी दोनों पक्षों के बीच बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला कि हड़ताल ना हो।
तीनों बातों पर मैंने फिर से उनको रिक्वेस्ट की कि वो स्ट्राइक विड्रॉ करें। उसमें एक यूनियन ने विड्रॉ किया है, अभी स्कूल बस और जो गांव में है उनमें उन्होंने भी विड्रॉ किया है, केवल एक ही एसोसिएशन रही है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात कर रहे थे संदीप सोनी। दिल्ली से सटे दादरी के बिसराड़ा गांव में जिस घर पर सोमवार को हमला हुआ था, उनके परिजनों का आरोप है कि इसके पीछे प्रताप सेना नाम के संगठन के लोगों का हाथ है। हमले में मारे गए अखलाक अहमद के परिजनों का कहना है कि इसी संगठन के लोगों ने ही अफवाहें फैलाकर इलाके में लोगों को उकसाया। बिसराड़ा गाँव से सलमान रावी की ये रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि पूरा इलाज जो है दानिश का सरकार कराएगी, आप लोगों की सुरक्षा को कोई किसी तरह का खतरा नहीं है, यहाँ परमानेंट जब तक आप लोग मुतमईन नहीं होंगे तब तक।
ये हैं गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार यादव, जो मृतक अखलाक अहमद के परिजनों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं।
बाकी के लोग भी गिरफ्तार किए जाएंगे और उनको सजा मिलेगी, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं किसी तरह की।
यही चाहते हैं
जी हम, पूरी सरकार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है।
मगर ADM साहब के आश्वासनों के बावजूद परिवार के लोगों को स्थानीय थाने पर कोई विश्वास नहीं है।
जिस थाने से हमारी जांच हो रही है, इस थाने से हमारी जांच ना करा के किसी और से कराई जाए।
कौन सा है?
ये थाना जारछ है जी हमारा, हम जारछ थाने से नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ तो हमारी पहुँच है, हमारी पकड़े, सारे अफसर हमारे हैं, सारा मीडिया हमारा है, सारे अफसर हमारे हैं, जो हम चाहेंगे वो होगा।
बहुजन समाज पार्टी से इलाके के विधायक सतबीर गुजर भी पुलिस के रवैये से खुश नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस अगर मुस्तैदी दिखाती तो घटना रोकी भी जा सकती थी।
नहीं, बाहर के लोग या असामाजिक तत्व जो आए हैं उन्होंने यहाँ के भड़काया लोगों को, और ये ऐसी घटना जो रात को 10:30 बजे घटी है, ये उन्हीं की देन है जो बाहर के लोग आए हैं। तो पुलिस की थोड़ी सी ढील रही, अगर पहले सुस्त हो जाती तो शायद घटना ना घटती। जैसे लोगों ने बताया कि हमने सूचना दे दी थी 7-8 बजे ही पुलिस को, पुलिस थोड़ी सी लापरवाही कर गई, अगर लापरवाही नहीं होती तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती।
उधर मंदिर के पास रहने वाले ग्रामीण भी कहते हैं कि जब लोगों का हुजूम मंदिर में घुस गया तो पुजारी भी कुछ नहीं कर पाए और उनसे माइक छीन कर लोगों ने खुद ही घोषणा करनी शुरू कर दी।
मैं तो सो गया था जी। देखो सारे दिन खेती बाड़ी का काम करें, दुकान का भी काम है, बच्चे ड्यूटी करते हैं, तो हार थक जा, तो हम तो 10 बजे सो गए थे उस टाइम। सुबह को सुना हमने जो भी कुछ किस्सा सुना, रात का किस्सा।
ये प्राचीन शिव मंदिर, ये
अब कोई आया बच्चे जैसे बाबा जी कहने लगे अनाउंसमेंट कर दो, वो बेचारा मने भी क्या करे, उन्होंने पकड़ के आप कराया उसने करा।
मगर मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं।
ये तो इस कदर परेशान है जिसकी कुछ हद नहीं, इसके साथ साथ जितने भी रिश्तेदार हैं सारे परेशान हैं, क्या किया जाए। अब आप ये देखिए कि इतनी फोर्स होने के बावजूद और इस तरह से ये लोग धमकियां दे रहे हैं, और लेडीजों का वहाँ मौजूद है, तो क्या होगा, किस बेस पर जाए, कोई खैरियत लेने भी कैसे जाए।
परिवार के ही सदस्य अफजाल का आरोप है कि पूरी घटना में किसी प्रताप सेना नाम के संगठन के लोगों का हाथ है, जिन्होंने शाम से ही इलाके में नफरत का माहौल फैलाया और लोगों को उत्तेजित किया।
ये जो हादसा हुआ मेरे भाई के साथ, ये प्रताप सेना का ही इसमें हाथ है, और ये छोटी समझी साजिश है, ना कि कोई गाय का अवशेष मिला है, ना कोई ब्लड मिला है, ना कोई गाय का खाल मिली है, ना गाय का गोश्त मिला है, ना कोई ऐसा औजार मिला जिससे गाय काटी गई। मेरा घर सारे हिंदुओं के बीच में है, अकेला घर है, गाय को लाने के लिए भी वही रास्ता है जो हिंदुओं के रास्ते से गुजरता है, जो घर से गुजरता है। मेरे पड़ोस में सारे राजपूत हैं, सारे अगल बगल सब राजपूत हैं, गांव पूरा राजपूतों का है। मुसलमान जो कुछ बाकी हैं वो मस्जिद के करीब हैं, हमारे घर से करीबन पूरा गांव पार करके हैं।
हालांकि ज़िला प्रशासन ने अफजाल के आरोपों की पुष्टि नहीं की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं कि जाँच के बाद ही इन आरोपों की पुष्टि हो पाएगी।
अभी एक जाँच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पूरे तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो हम लोग आप मीडिया से शेयर करेंगे।
जहां बिसराड़ा गांव में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती की जा रही है, खबरें ऐसी भी मिल रही हैं कि दादरी से कई परिवारों का पलायन भी शुरू हो गया है। सलमान रावी, बीबीसी दादरी।
इलाके में तनाव को देखते हुए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है और इस बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने घटना में मारे गए अखलाक अहमद के परिवार को 10 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की भी घोषणा की है। और अब बारी है विशेष रिपोर्ट की। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में इस बात के आदेश जारी किए थे कि सरकार राज्य के एड्स पीड़ितों को हर महीने 500 रुपए की सहायता राशि देगी, लेकिन राज्य में एड्स से निपटने की जो रणनीति है उसका हाल ये है कि राज्य एड्स नियंत्रण समिति में पिछले 5 महीने से कॉन्डोम की आपूर्ति बंद है। कुछ दिन के लिए पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से उधार में कॉन्डोम लिए गए, लेकिन अब मध्य प्रदेश ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। रायपुर से आलोक पुतुल की ये विशेष रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर महीने 500 रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा के बाद भी रायपुर के विपिन कुमार खुश नहीं हैं। 2 साल पहले उन्हें पता चला कि वे HIV से ग्रस्त हैं। पढ़ाई लिखाई के बाद भी विपिन के पास नौकरी नहीं है, इसलिए HIV की दवा के लिए वे सरकारी अस्पताल पर निर्भर हैं। लेकिन इन सरकारी अस्पतालों या एड्स नियंत्रण केंद्रों में दवा की कौन कहे, कंडोम तक नहीं मिलता। HIV से जूझ रहे विपिन सरकार की ताज़ा घोषणा पर कई सवाल खड़े करते हैं।
ट्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन, घोषणा और इम्प्लीमेंटेशन दोनों में यही एक बेसिक फ़र्क है, बुनियादी तौर पे जो अंतर दिखता है कि पैसे तो ये देने की उन्होंने घोषणा की है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा निहायती जो ज़रूरी चीज़ है एड्स पेशेंट को वो होता है कंडोम। तो वो कैरी फॉरवर्ड करता है और उसके लिए एक हथियार है कंडोम जो होता है, अगर वो नहीं रहेगा तो दिक्कतें तो और बढ़ेंगी।
राज्य में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 19,000 से अधिक लोग HIV से संक्रमित हैं, जिनमें बड़ी संख्या हाई रिस्क ग्रुप की महिला सेक्स वर्करों की है। जाहिर है कंडोम की अनुपलब्धता के कारण HIV के संक्रमण का खतरा और तेजी से बढ़ गया है। रायपुर में राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अतिरिक्त परियोजना संचालक डॉक्टर SK बिंझवार भी मानते हैं कि उनके 117 सेंटरों में कहीं भी कई महीनों से कंडोम उपलब्ध नहीं है।
कंडोम सीधे हमें दिल्ली से प्राप्त होता है नाकों से, तो वहाँ से हमें भी प्राप्त नहीं हो रहा 2-3 महीने से, क्योंकि वहाँ से जब बार बार संपर्क किया गया तो वो टेंडर प्रक्रिया में है। वो काम प्रभावित हो रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, कुछ मंगवाया था यहाँ से, हमारे फैमिली प्लानिंग डायरेक्टर महोदय ने हमें दिलवाया था।
पिछले 6 सालों से HIV पीड़ितों के बीच काम करने वाली मितवा नामक गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष विद्या राजपूत का दावा है कि राज्य में HIV पीड़ितों की संख्या 70,000 से अधिक है और पिछले 1 साल में 1200 से अधिक HIV पीड़ितों की मौत हो चुकी है। विद्या का कहना है कि ऐसे में कंडोम का नहीं होना लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की तरह है।
मुझे जो चीज़ करना था, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, जो हाई रिक्स बिहेवियर है उसे लो रिक्स में बदलना था, जिनमें मुझे कम्युनिटी को ये बताना था कि आप अपने हाई रिक्स को लो रिक्स में बदलें, जिसमें एक था कॉन्डम का यूज़, कि आप हमेशा और सही कॉन्डम का इस्तेमाल करें। जब आज देखती हूँ कि कॉन्डम नहीं आ रहा है, परेशानी तो है, क्योंकि पूरा का पूरा तबका, पूरा का पूरा ग्रुप अभी उनका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ।
लेकिन राज्य के स्वास्थ्य सचिव विकासशील कंडोम की आपूर्ति नहीं होने के लिए केंद्र सरकार की नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नाको को जिम्मेवार मानते हैं।
और हमारे स्टेट में क्या है, ये जो नाको के कॉन्डोम्स हैं, ये नाको से ही सप्लाई होते हैं और पिछले 3 महीने से कोई सप्लाई आई नहीं है। हमारे पास जो फैमिली प्लानिंग में जो सप्लाईज हैं, उनको हमने फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए बोला है, क्योंकि जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसमें भी टेम्पररी मेथड्स में कॉन्डम की सप्लाई होती है। हालांकि उसमें हमारी जो डिमांड थी अराउंड 7 करोड़ कॉन्डम्स की थी, बट वी हैव सो फार रिसीव्ड ओनली 48 लाख कॉन्डम्स।
पिछले साल भर में कई ऐसे अवसर आए हैं जब सरकारी केंद्रों में HIV पीड़ितों को दी जाने वाली दवा महीनों तक नहीं मिली है और HIV पीड़ितों में संक्रमण का स्तर और बढ़ गया है। जाहिर है ऐसे में कंडोम की अनुपलब्धता ऐसे मरीजों की मुश्किलें और बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
आपको आलोक पुतुल की ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिएगा। और अब समय है समाचार पत्रों का की समीक्षा का। प्रगति जी स्टूडियो आ चुकी हैं। प्रगति,
जी सुशीला, ये जो हमारे सभी अखबार निकले हैं उनके उनमें जो खबरें आम हैं वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में मकोका कोर्ट ने 5 को सजाए मौत और 7 को ताउम्र कारावास दिया है, ये सभी अखबारों में ये खबर है। नौसेना में शामिल हुआ INS कोची, डीजल 50 पैसे महंगा हो गया है और CNG PNG हो सकती है सस्ती, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। ग्रेटर नोएडा में मृतक के आश्रितों को सरकार देगी मदद और सोमनाथ पुलिस पूछताछ के दौरान रो पड़े। ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल आज से शुरू हो रही है और UN में नवाज शरीफ ने फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। ये ऐसी खबरें हैं जो सभी अखबारों ने कमोबेश ली हैं। उसके अलावा दैनिक भास्कर में एक खबर है जो हमारे श्रोताओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है कि TDS बचाने के लिए भर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म। गोवा के लुई बर्जर रिश्वत कांड में पूर्व मुख्यमंत्री कामत और पूर्व मंत्री अलेमाओ के नार्को टेस्ट की तैयारी हो गई है और जन्म देने वाले पिता ने बेटी के सौतेले पिता के लिए तोड़ी परंपरा, दोनों ने एक साथ विदा की बेटी, ये एक काफ़ी हृदयस्पर्शी कहानी है। हिंदुस्तान में खबर है कि बिहार में आप किसी का प्रचार नहीं करेगी, आप पार्टी किसी का प्रचार नहीं करेगी, ये केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है। और भ्रष्ट अफसरों की सूची केंद्रीय सतर्कता आयोग ने तैयार कर ली है, इसमें 108 अफसरों की सूची है ये, और इसमें सतर्कता आयोग ने कड़ी सज़ा देने की सिफारिश भी की है। और चीन में एक घंटे के अंदर 15 धमाके हुए जिनमें 7 की मौत हो गई है, ये भी खबर हिंदुस्तान ने ली है। इसके अलावा अमर उजाला है, अमर उजाला में बदरपुर में सांप्रदायिक बवाल की खबर है और गुरुद्वारा निर्माण पर रोक नहीं लगा सकती SGPC, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो गुरुद्वारा निर्माण पर रोक नहीं लगा सकती है। जनसत्ता ने एक खबर ली है कि अयोध्या में विवादित स्थल का अधिग्रहण हो, ये भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जब INS कोची को नौसेना को सौंपा तो उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लगेगा, कि भारत में ही बनाए जाएंगे अब इस तरह के युद्धपोत। विधायक पर हमले का विरोध कर रहे छात्रों पर डंडे बरसाए पुलिस ने, ये जयपुर की खबर है और जनसत्ता में ली गई है। तो ये था अखबारों की समीक्षा से।
समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति, और अब सुन लेते हैं खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारत के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आगाज आज से हो रहा है। गत विजेता तमिलनाडु समेत 24 टीमें आज अपने अपने मुकाबले खेलने उतरेंगी। तमिलनाडु अपने अभियान का आगाज बड़ौदा के खिलाफ चेन्नई में करेगा। उम्मीद के मुताबिक नई अंक प्रणाली इस रणजी सत्र में लागू नहीं की जाएगी। कार्य समिति की बैठक स्थगित होने की वजह से अनिल कुंबले की अगुवाई वाली तकनीकी समिति की प्रस्तावित घरेलू अंक प्रणाली पर चर्चा नहीं हो सकी। बोर्ड सदस्यों को 28 अगस्त को प्रस्तावित नई अंक प्रणाली पर गौर करना था, लेकिन एन श्रीनिवासन की मौजूदगी के कारण उस बैठक को स्थगित करना पड़ा। प्रस्तावित प्रणाली के अंतर्गत मौजूद प्रारूपों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें रणजी मैचों में पहली पारी के बढ़त के आधार पर दिए जाने वाले अंक नहीं दिए जाने का प्रावधान है। वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल होने वाले पहले T20 मैच के लिए पिच तैयार कर ली गई है। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पिच क्यूरेटर सुनील चौहान ने संतुलित पिच तैयार की है।
जैसे कि सभी को मालूम है 2020 मैच है और हमारी कोशिश है 2020 के लिए जो स्कोटिंग पिच होती है, बेसिकली 2020 के पिच में हम ये देखते हैं कि पूरे 40 ओवर तक पिच का बिहेव सेम रहे, वो हमारी कोशिश रहती है और वैसे ही हमने पिच प्रिपेयर कर रखी।
वनडे और टेस्ट सीरीज से पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। और अब बात फुटबॉल की। 2018 फीफा विश्व कप क्वालिफायर के लिए संभावित 22 भारतीय खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। संभावित खिलाड़ियों में गोलकीपर सुब्रत पॉल के अलावा करणजीत सिंह और गुरप्रीत संधू ने जगह बनाई है। भारतीय टीम 8 अक्टूबर को तुर्कमेनिस्तान और 13 तारीख को ओमान के खिलाफ उतरेगी। ग्रुप डी में भारतीय टीम अब तक खेले 3 मैच हारकर सबसे निचले पायदान पर है। ऐसे में उसकी क्वालिफाई करने की संभावना ना के बराबर है।
खेल समाचार सुना रही थी राखी शर्मा, और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें अधिवेशन में भाषण देते हुए एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में पहली बार फलस्तीनी झंडा फहराया गया। रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने इस पर सहमति जताई है कि सीरिया में दोनों देशों को संयुक्त सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए। नाइजीरिया की सेना का कहना है कि इस्लामिक चरमपंथी गुट बोको हराम जिन इलाकों को छोड़ रहा है वहां के कुओं और नहरों में जहर मिला रहा है। अफगानिस्तान के कुंदूज शहर के पास हवाई अड्डे पर कब्जा बनाए रखने के लिए अफगान सुरक्षा बल और तालिबान लड़ाकों के बीच गंभीर लड़ाई चल रही है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त।